मनाल का जादू मनोहर लाल के सिर चढ़ चुका था। उसे माना के ही सपने आते थे। वो माना को अपहरण भी कर सकता था, मगर उसे माना के साथ साथ उसकी फैक्ट्री भी चाहिए थी। इसीलिए उसने महेश खन्ना के साथ एक मीटिंग तय की थी। महेश खन्ना मनोहर लाल से मिलने आए थे। जब महेश खन्ना मनोहर लाल से मिलने पहुंचे, तो सबसे पहले मनोहर लाल अकेला ही उनके सामने आया। उसने बहुत शरीफ बनते हुए महेश खन्ना का स्वागत किया, अपना संबंध किसी खानदानी परिवार से बताया। वो महेश खन्ना को प्रभावित करना चाहता था। उसने सबसे पहले महेश खन्ना से कहा, देखिए, मुझे आपकी फैक्ट्री खरीदनी है। मैं दवाइयों के बिजनेस में उतरना चाहता हूँ। आप अपनी फैक्ट्री कितने में बेचेंगे? देखिए मनोहर लाल जी, मुझे अपनी फैक्ट्री नहीं बेचनी है। आपकी फैक्ट्री की जो कीमत है, मैं उससे दोगुना दे सकता हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मनोहर लाल ने कहा। वो अपने आप को महेश खन्ना के सामने खानदानी रईस दिखा रहा था। देखिए मनोहर लाल जी, चाहे आप मुझे तिगुनी कीमत भी दें, तो भी मैं अपनी फैक्ट्री नहीं बेचना चाहता। ये बात आपको समझनी चाहिए कि मैंने मना कर दिया है। मेरे पास आपके लिए एक और भी प्रस्ताव है। देखिए, मुझे आपके किसी भी प्रस्ताव में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपके कहने पर इस मीटिंग के लिए ज़रूर आया, मगर मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, मुझे अपनी फैक्ट्री नहीं बेचनी है। इस फैक्ट्री को मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया है, महेश खन्ना ने कहा। आप एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, आप तो पहले ही गुस्सा होने लगे। ठीक है, बताओ, मगर फैक्ट्री बेचने वाली कोई बात मैं सुनना नहीं चाहता, महेश खन्ना गुस्से से बोले। मैं आपकी बेटी मनाल से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत खुश रखूँगा, रानी बनकर रहेगी वो मेरे घर में। मगर आपको नहीं लगता कि आपकी उम्र मेरी बेटी से ज्यादा है? आप उससे कितने साल बड़े होंगे? आप दोनों की उम्र का काफ़ी फ़र्क है। महेश जी को उसका मनाल से हाथ मांगना बुरा लगा था। मर्दों की उम्र नहीं देखी जाती। अगर मैं उससे 10 साल भी बड़ा हूँ तो क्या हुआ? मेरी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है, बहुत जल्दी उसकी सगाई होने वाली है, इसीलिए मेरी बेटी के साथ आपका रिश्ता नहीं हो सकता, कहकर महेश खन्ना खड़े हो गए। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, काफ़ी समय हो गया मुझे यहाँ। इतनी जल्दी क्या है, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप मेरा प्रस्ताव बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, मनोहर लाल अपनी बात का रुख बदलते हुए खड़ा हो गया। उसकी गुंडा पार्टी, उसकी गैंग भी सामने आ गई। आपकी फैक्ट्री और आपकी बेटी दोनों मुझे हर हाल में चाहिए। मैं तुम्हारी फैक्ट्री भी लेकर रहूंगा और तुम्हारी बेटी भी, मनोहर लाल महेश खन्ना को डराने लगा। वो क्या है कि जिस चीज़ पर कलू भाई की नज़र पड़ जाती है, वो उनकी हो जाती है, उसका एक चमचा बीच में बोला। मेरी बेटी कोई चीज़ नहीं है, समझे तुम लोग? महेश खन्ना गुस्से में वहां से जाने लगा। अब वो चीज़ है, जान नहीं है, वो तो भाई ही जानता है। अब सीधे सीधे अपनी बेटी की शादी भाई के साथ कर दो और फैक्ट्री दहेज में दे दो। समझ आ गई बूढ़े तुम्हें? उसका दूसरा आदमी टेबल पर पिस्तौल रखते हुए बोला। तुम लोग मुझे डरा रहे हो, मगर मैं ऐसे डरने वाला नहीं हूँ। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों को, कहता हुआ वो बाहर जाने लगा। अगर तुम लोग मेरी फैक्ट्री और घर के आसपास भी नजर आए तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा, महेश खन्ना ने उनसे साफ साफ कह दिया था। मेरी बेटी और मेरी फैक्ट्री दोनों से दूर रहो तुम लोग। वो इस वक्त वहां से बाहर निकल गया। महेश खन्ना उन लोगों को जवाब देकर बाहर निकल आया था, मगर उसके मन में बहुत घबराहट हो रही थी। जब तक वो उसकी फैक्ट्री की बात कर रहे थे, तब तक उसने बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया था। उसे लगा कि कोई शायद उसे फैक्ट्री खरीदना चाहता है, मगर जब माना की बात आई और जिस तरीके से उन्होंने बात की थी, उस बात को सुनकर महेश खन्ना काफी डर गया था। और वैसे भी अब उन्होंने सीधे सीधे धमकी दी थी। उन लोगों को उसकी बेटी और फैक्ट्री दोनों चाहिए थी, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। उसने जाते हुए सबसे पहले माना को फोन करने की कोशिश की, अगर माना कहीं बाहर हो तो घर पहुंच जाए। उन्हें माना की चिंता हो रही थी। क्या करे भाई, वो बंदा तो जवाब दे गया, इसने तो साफ साफ मना कर दिया, मनोहर लाल का एक चमचा बोला। करना क्या है, वही जो हम हमेशा से करते आए हैं, तुम लोग तो जानते हो सब, मनोहर लाल कुटिल मुस्कान के साथ बोला। तो उठा ले इसकी बेटी को, समझता क्या है अपने आप को ये बूढ़ा, उसका दूसरा चमचा बोला। नहीं, उठाना नहीं है, मनोहर लाल ने कहा। क्यों नहीं उठाना उसको? तो फिर क्या करना है? हमें केवल वो लड़की नहीं, उस बूढ़े की फैक्ट्री भी चाहिए। तो फिर क्या करना है, पहले वाले चमचे ने पूछा। सबसे पहले इस बूढ़े का एक्सीडेंट कर डालो, ये घर नहीं पहुंचना चाहिए, बिल्कुल एक्सीडेंट लगना चाहिए, मर्डर नहीं, याद रहे, मनोहर लाल उन्हें समझाते हुए कह रहा था। हो जाएगा भाई, घर नहीं पहुंचेगा आज, इसकी लाश पहुंचेगी। एक बार तुम इतना काम करके आओ, फिर बाकी बताऊंगा मैं आगे क्या करना है, मनोहर लाल अपने चमचों से कह रहा था। वो लड़की मनाल तुम लोगों को भी तो पसंद आई थी, उसके चमचे एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराने लगे। तो एक बार मैं उससे शादी कर लूं, क्योंकि अगर शादी होगी उसके साथ वो फैक्ट्री भी लेकर आएगी, फिर फैक्ट्री भी तुम संभालना और फैक्ट्री वाली को भी। वो सब मिलकर हंसने लगे थे। भाई का दिल बड़ा है, भाई का तो स्वभाव है, पहले माल को खुद चखते हैं, फिर हम लोगों की बारी आती है। वो सभी लोग माना को आपस में बांटने की बात कर रहे थे। महेश खन्ना घर नहीं पहुंचे थे, रास्ते में ही उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, मगर उनकी मौत नहीं हुई थी, एक्सीडेंट में वो कोमा में चले गए थे। एक्सीडेंट के बाद किसी ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया था। मनाल और उसकी माँ अस्पताल चली गई थी। डॉक्टर ने बताया कि वो कोमा में है, मालूम नहीं होश आने में कितने दिन लगेंगे।
मॉम, हमें मेहर को कुछ नहीं बताना चाहिए, वरना वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाएगा। उसकी स्टडी खत्म होने में 2-3 महीने ही रहते हैं। मनाल, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जहाँ तुम्हारे डैड अस्पताल में है और फैक्ट्री को कौन देखेगा, मुझे फिक्र हो रही है। अगर मेहर होगा तो सब संभाल लेगा। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, फिर पापा भी जल्दी होश में आ जाएंगे, आप घबराए नहीं। माना अपनी माँ को तसल्ली दे रही थी। उसका मन भी अंदर से घबरा रहा था, मगर उसके भाई के एग्जाम शुरू होने में थोड़ा ही समय रहता था। उसके बाद उसकी MBA पूरी हो जानी थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी स्टडी छोड़कर आए। मनाल को पता था कि अगर एक बार वो स्टडी छोड़कर आ गया तो फिर उसकी स्टडी बीच में रह जाएगी। उसने अपने मन में फैसला कर लिया था कि फैक्ट्री वो संभाल लेगी। उसे किसी भी आने वाले खतरे के बारे में नहीं पता था। वो सोचती थी, फैक्ट्री तो चल रही है, ऐसे ही चलती रहेगी, तब तक उसके पापा ठीक हो जाएंगे। फिर उसके पास उसके पापा के वफादार लोग भी हैं जो उसकी मदद करेंगे। उसे फैक्ट्री चलाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। वैसे भी उसने पापा का ऑफिस ज्वाइन किया हुआ था, तो उसे थोड़ा बहुत अब हिसाब भी आने लगा था फैक्ट्री और ऑफिस का। मगर उसे नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। मनाल और फैक्ट्री दोनों पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी थी। भाई वो बूढ़ा तो बच गया, वो कोमा में चला गया, कहने का मतलब है अभी तक होश नहीं आया और पता नहीं कब तक होश आएगा। मैं अभी अस्पताल से खबर लेकर आया हूँ, अगर आप कहें तो भाई अस्पताल में ही खत्म करते हैं उसको। नहीं, अभी नहीं मारना है उसे। अब वो अस्पताल में दाखिल है तो उसके परिवार का बहुत खर्चा हो रहा होगा, मनोहर लाल बोला। हाँ भाई, वो तो होगा ही, अब रोज बिल बनेगा उनका।
तो बूढ़े को मारना नहीं है, पहले थोड़े दिन उनका खर्चा होने दो, फिर उसके बाद फैक्ट्री में जो हमारे लोग काम करते हैं, जिन लोगों को हमने पैसे देकर अपनी तरफ मिलाया हुआ है, उनसे कहो कि वो लोग फैक्ट्री में गड़बड़ शुरू कर दें और कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाकर फैक्ट्री में हड़ताल करा दें, उनकी दवाइयों की सप्लाई सब रुक जाए। जब दवाइयों की सप्लाई नहीं होगी तो कोई पेमेंट नहीं होगी, कोई पेमेंट नहीं होगी तो वो मजदूरों को तनख्वाह कहाँ से देंगे, जो दवाइयों के लिए कच्चा माल मिलता है उसके पैसे कैसे देंगे। पूरा सिस्टम उनका ठप कर दो। ठीक है भाई, तुम इतना काम करो, जब ये हो जाए तो फिर मैं तुम्हें आगे का बताऊंगा, कुछ सोचते हुए कुटिल मुस्कान के साथ मनोहर लाल बोला। मनोहर लाल अपने मन में आगे का प्लान कर रहा था। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो माना को मजबूर करने वाला था कि वो उससे शादी कर ले। वो माना के आगे ऐसे हालात पैदा करेगा कि उसके पास शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। महेश खन्ना का जिंदा रहना भी उनके हक में ही गया था, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी और उन पर लगातार खर्चा हो रहा था। उधर फैक्ट्री में भी काम बंद हो गया, हड़ताल होने की वजह से दवाइयों की सप्लाई रुक गई थी, उनकी पेमेंट बीच में ही रुक गई थी। माना फैक्ट्री कई महीनों से चला रही थी, मगर बिजनेस पर उसकी पकड़ नहीं थी। सच पूछा जाए तो उसे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो केवल टाइम पास कर रही थी। मनोहर लाल ने अपनी अगली चाल भी चल दी थी। उसने माना का ड्राइवर खरीद लिया था। वही ड्राइवर माना के हर जगह आने जाने की खबर देता था, माना किससे मिल रही है, किससे मदद मांग रही है। घर में काम करने वाले जो लोग थे, किसी बहाने से उन्हें भी बदल दिया गया था। पुराने नौकर अपने गांव जा रहे हैं, इस बहाने से नए काम वाले घर आ गए थे। पूरी नज़र थी उनकी माना पर। मनाल और उसकी माँ को खबर भी नहीं थी कि उनके चारों तरफ एक घेरा बन चुका है। वो कितने बड़े खतरे में थे, इस बात की उन्हें खबर नहीं थी। माना इस सारे खतरे से अनजान अपने पापा की सेहत की फ़िक्र कर रही थी। वो फैक्ट्री को अच्छे तरीके से चलाना चाहती थी, इसलिए उसने सबसे पहले उस लड़के से, जिसे उसके पापा ने पसंद किया था, मदद मांगने गई थी।